जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। 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 जय ओम विश्वपाल परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोदशीमान कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदी समावेत भक्तवृंद की जय। समावेत भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి. శ్రీమద్ భాగవతం చతుర్థ స్కంద 28వాం అధ్యాయ శీర్షక్ అగ్లే జన్మ మే పురంజన్ కో స్త్రీ యోని కి ప్రాప్తి. శ్లోక్ క్రమాంక్ 16. దుహిత్రుః పుత్ర పౌత్రాంశ్చ జామీ జామాతృ పార్షదాన్ స్వత్వ అవశిష్టం యత్ కించిత్ గృహ కోశ పరిచ్ఛదం. దుహిత్రుః పుత్ర పౌత్రాంశ్చ జామి జామాతృ పార్షదాన్ స్వత్వావశిష్టం యత్ కించిత్ గృహకోశ పరిచ్ఛదం. దుహిత్రుః పుత్ర పౌత్రాంశ్చ జామి జామాతృ పార్షదాన్ స్వత్వావశిష్టం యత్ కించిత్ గృహకోశ పరిచ్ఛదం. దుహిత్రుః పుత్ర పౌత్రాంశ్చ జామి జామాతృ పార్షదాన్ స్వత్వావశిష్టం యత్ కించిత్ గృహకోశ పరిచ్ఛదం. దుహిత్రుః పుత్ర పౌత్రాంశ్చ గృహకోశపరిచ్ఛదం. దుహిత్రుః పుత్ర పౌత్రాంశ జామి జామాతృ పార్షదాన్ స్వత్వావశిష్టం యత్ కించిత్ గృహకోశపరిచ్ఛదం. పార్షదావశిష్టం యత్కించ గృహకోశపరిచ్ఛదం. మాతాజీ, దుహిత్రుః పుత్ర్యోం పుత్ర పుత్రోం పౌత్రాం నాతియోం కే విషయ మే చ తథా జామి బహువోం జామాతృ దామాదోం పార్షదాన్ పార్షదోం స్వత్వ సంపత్తి అవశిష్టం శేష్ యత్ కించిత్ జో కుచ్ భీ గృహ ఘర్ కోశ ఖజానా పరిచ్ఛదం ఘరేలూ సాజ్ సమాన్. అనువాద ఔర్ తాత్పర్య ఇసి భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద ద్వారా. తబ్ రాజా పురంజన్ అప్ని పుత్రియోం పుత్రోం పౌత్రోం పుత్రవధువోం జామాతా నౌకరోం తథా అన్య పార్షదోం కే సాథ్ సాథ్ అప్నే ఘర్ ఘర్ కే సారే సరజ్ సాజ్ సామాన్ తథా జో కుచ్ భీ సంచిత్ ధన్ థా ఉన్ సబ్ కే విషయ మే సోచనే లగా. తాత్పర్య, ప్రాయః దేఖా గయా హై कि जिन्हें देह से बहुत मोह होता है वे डॉक्टर का कुछ काल के लिए जीवन बढ़ा देने के लिए याचना करते हैं। यदि तथाकथित विज्ञानी ऑक्सीजन तथा अन्य औषधियों से के बल से रोगी की आयु कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देते हैं तो वे इसे महान सफलता मानते हैं, यद्यपि रोगी को अंततः मरना पड़ता है। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। रोगी तथा डॉक्टर मृत्यु के समय जीवन की अवधि बढ़ाने के विषय में सोचते हैं, जबकि पहले से शरीर के सभी अवयव प्राय मृत प्राय हो चुके हैं। अवयव प्रायः मृत प्राय हो चुके होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं दंशजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदे श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। अहो महीयसाम जंतुर जीविताशा यद बहुत एक सुंदर श्लोक भागवत के प्रथम स्कंद में आता है, जहां विदुर जी संपूर्ण कुरुक्षेत्र के रण के बाद जब महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, सम्राट बन गए हैं, फिर भी जिस व्यक्ति ने सारे पांचों पांडवों को अलग अलग तरीके से विशान महाग्नि पुरुषार्थ दर्शनात् असत सभाया अलग अलग तरीके से उनको नष्ट करने का प्रयास किया, वही व्यक्ति अब आदत्ते गृहपालवत भीम अपवर्जितम पिंडम अभी उन्हीं के घर में रह रहे हैं, जिनको उन्होंने पूरे जीवन भर मारने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से, स्पष्ट था, इसमें कोई संशय नहीं था। और अब उन्हीं के यहां गृहपालवत, गृहपाल मतलब कुत्ते जैसे पाले जाने पशु। तो जब विदुर जी आते हैं, वो तो निकल गए होते हैं घर से संन्यास लेकर, केवल एक उद्देश्य से आते हैं, ये मेरे जो बड़े भाई हैं, प्रेम है, प्रेम है। और उस प्रेम का प्राकट्य यहां विदुर जी प्रदर्शित कर रहे हैं कि अहो मही असाम जंतुर जीवित आशा। अहो मतलब कभी कभी हम लोगों ने शास्त्र में कभी कभी सुना है, काफी चीजें हम सुने हैं, पर जब पहली बार कुछ देखते हैं बोलते अहो यही है क्या, वो ये बार बार हमने सुना था। तो कभी कभी अनुभव होने पर शास्त्र के वाक्य साक्षात्कार होते हैं। तो मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं, मैं जब घर छोड़ के मंदिर में प्रवेश किया और 6 महीने में फिर सैफरन पहन लिया, तो मुझे लग रहा था मैंने क्या ये संसार त्याग दिया और 2-3 साल हो गए। अच्छा प्रवचन देता था मैं आसक्ति के ऊपर, भगवद गीता कोर्स बहुत प्रसिद्ध हो गया था और उसमें विवरण के साथ कहता था आसक्ति क्या होती है, लोग तालियां भी बजाते थे, भक्त बन जाते थे। 3 साल के बाद 92-93 के करीब मुझे एक छोटा सा पोस्ट कार्ड आया और उस पोस्ट कार्ड में मेरे भाई ने लिखा था कि वैसे तू तब कुछ छोड़ दिया है मुझे मालूम है, सिर्फ बता रहा हूं तुझे कि हमारा जो पुराना घर है वो हम छोड़ के मैं कहीं और जा रहा हूं और ये लोग सब उधर उधर जा रहे हैं, पिताजी गुजर चुके थे मां को लेके वो दूसरी जगह। 2 या 3 रात मैं सो नहीं पाया, 2 या 3 रात ऐसे तिल में लग गया, सरदर्द। तीसरे दिन मैं सोचा क्यों हुआ, ये कार्ड में ऐसा क्या था कि मैं इतना विचलित हो गया। बाद में मुझे समझ में आया, बोला मेरा भाई वो पुराना घर जो वैसे भी थोड़ा पुराना हो चुका था वो घर छोड़ के दूसरा घर गया, एटिकेट के व्यवहार के रूप में उसने लिखा भाई इनके तू घर कभी आना चाहे अब इस एड्रेस में मत आना उधर आना, इस उद्देश्य से उसने लिखा था। इन्हें तो बेचारा वहां तू पहुंचेगा प्रसाद खा के जाने के लिए और बाद में देखेगा कोई और बैठा हुआ होगा, इस भावना से उन्होंने लिखा था। मेरी 3 दिन की नींद उड़ गई। फिर मैं थोड़ा गहराई में सोचने लगा पर क्यों हो गया ऐसा, तब मुझे समझ में आया कि कहीं तो बहुत ही मेरे हृदय की गहराई में वो घर के प्रति आसक्ति थी मेरी, घर के प्रति नहीं एक आश्रय। अगर मुझे मंदिर से निकाल दिया लोगों ने क्या मालूम, इस कौन में अगर कल पॉलिसी बदल दिया तो मैं बोले निकल जा, और मैं मेरा भी थोड़ा अहंकार है, हाँ मान सम्मान है, मैं भी निकल जाऊंगा, एक पैसा नहीं चप्पल भी छोड़ के चला जाऊंगा, जो कपड़ा पहना हो वो कपड़े से निकल जाऊंगा, खून गर्म था उसमें, मैं निकलूंगा तो फिर क्या, ट्रेन में घुस जाऊंगा बिना टिकट के क्या साधु हूं, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर। और टीटी आया तो टॉयलेट में घुस जाने का बस, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट फिर चले जाने के बस। और बेंगलोर पहुंचे, घर चला जाओ। तो मुझे मालूम था यहां कुछ भी हो जाए एक आश्रय है, मेरा खुद का घर है जहां मैं हमेशा जा सकता। ये संपूर्ण बड़ा बिल्डिंग जो था उसका आधारशिला था, ये आश्रय था मेरा घर। और ये एक छोटा सा पोस्ट कार्ड ने बताया, नीचे से किसी ने चटाई खींच दिया, आप ऐसे ऐसे खड़े होकर जप कर रहे हैं। और उसको बताया गया कि भाई देखो 7:30 के पहले चटाई निकलना चाहिए। और वो देखता नहीं, उसको सब टाइम नहीं है किसको किसको कौन खड़ा है चटाई। तो क्या होता है आपको, ये मेरी परिस्थिति हुई, स्थूल शरीर का नहीं सूक्ष्म शरीर का, कि किसी ने मेरे पैर के नीचे से चटाई खींच दिया। और तब मुझे पहला बार एक झलक मिली कि क्यों यहां कहते हैं प्रसंग मजरम आशम, प्रसंगम अजरम पाशम, आत्मानम कवयो विदुहु। प्रसंगम, प्रसंगम मतलब आसक्ति, अजरम, अजर मतलब ये बूढ़ा नहीं होता कभी भी, नवयौवनम च, ये आसक्ति हमारे हृदय में, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, करोड़ों करोड़ों जन्म से 16 साल का एकदम ताकतवर है, इसको धक्का मारना बड़ा मुश्किल है। प्रसंगम अजरम और पाशम, ये एक बार बांध देता है तो आप निस्सहाय हो जाते हो। प्रसंगम अजरम पाशम, किसका किसको बांधा गया है, आत्मानम, असंगो ही अयम पुरुष, एक्चुअली जो आत्मा है इससे कुछ भी संबंध नहीं है सूक्ष्म और स्थूल शरीर का। पर जब इस भौतिक संसार में आता है, अनादि कर्म फले बड़ी भवारना बजले, कई जन्मों से कुछ आसक्तियां आती हैं और हम उन आसक्तियों के प्रति उनका हम आश्रय लेते हैं। और जब किसी चीज का आश्रय लिया और वो निराश्रय हो जाता है तो आदमी बहुत ही विचलित हो जाता है, हिल जाता है पूरा। तो कवयो विदुहु, बड़े बड़े कविम पुराणम मुशासितान, बड़े बड़े महात्मा गण जिन्होंने तत्व को समझा है, उन्होंने कहा है कि बहुत सूक्ष्म है, स्थूल चीजों को छोड़ देना बड़ा आसान है, वो भी तथाकथित होता है, पर मानसिक रूप से उन चीजों के प्रति आसक्ति, उन चीजों का आश्रय, उन चीजों पे निर्भर होना, ये कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए विदुर जी देखते हैं, क्यों, धृतराष्ट्र उसका हक था एक्चुअली, ही वॉज एयर टू द थ्रोन, बड़ा था, सबसे बड़ा तो वही थे, धृतराष्ट्र जी सबसे बड़े थे और उनका हक था राज्य। पर दुर्भाग्यवश क्योंकि वो अंधे थे, अंधा व्यक्ति कैसे राजा बन सकता है भाई, लड़ाई लड़ेगा तो कैसा लड़ेगा, तलवार लेके ये कहां जाएगा, और मंत्री बोला साइन करो इसके ऊपर तो कैसा साइन करेगा, क्या है क्या मालूम प्रैक्टिकल। तो इसीलिए उनको राजा नहीं बनाया गया था। और पर उनकी इच्छा थी, और जब दैववश उनके छोटे भाई निकल पड़े, वैराग्य ले लिए, परिस्थिति ऐसी थी, चले गए वो, उनका कभी राज्याभिषेक नहीं हुआ धृतराष्ट्र का, पर गद्दी पे बैठ गए, अच्छा लगा उनको। लोग राजा कहते हैं और राजा की गद्दी मिल गई, भले इससे डिटेल वो हुआ है कि नहीं, थोड़ा राज्याभिषेक हुआ कि नहीं, लोग स्वीकार ही नहीं किए, बट गद्दी पे बैठा हूं लोग राजा कह रहे हैं, अच्छा लगा उनको। पर उन्हें मालूम था कि अब युधिष्ठिर जब बड़ा हो जाएगा फिर से ये हिल जाएगा मेरा आश्रय, और इसीलिए उन्होंने सूक्ष्म रूप से क्या कुछ प्रयास किया दुर्योधन को राजगद्दी पे लाने के लिए। एक ही बाधा था और वो थे ये पांडव, खास करके युधिष्ठिर, और इसीलिए बोलना कुछ और कर कुछ और रहा था। एक आसक्ति थी केवल दुर्योधन के प्रति नहीं, पुत्र मोह तो था ही, पर साथ ही साथ मैं नहीं तो कम से कम मेरा खुद का शरीर से आया हुआ पुत्र कम से कम यहां बैठे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये भी एक प्रकार की सूक्ष्म आसक्ति है। ए फादर, ए सन लिव्स थ्रू द फादर, और ए फादर लिव्स थ्रू द सन। पिता पुत्र के द्वारा जीता है, और खास करके मेरा अहम ममी मेरे शरीर से आया। कहता है धृतराष्ट्र जी, कहते हैं कई बार महाभारत में वर्णन में, मैं जानता हूं पर मैं क्या करूं, मेरे शरीर से निकला मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जनस्य मोहो यम अहम ममेति। तो भीमा अपवर्जितम पिंडम, और किसी का डाला हुआ तो चल देगा, भीमा क्यों भीम, क्योंकि भीम वो व्यक्ति था जिसने धृतराष्ट्र को सबसे प्रिय दुर्योधन और दुशासन दोनों को फाड़ के फेंका था, चीर दिया था, खून पिया था। अब सोचिए आप कितना क्रोध होगा, इसलिए तो लोहे के पुतले को उसने टुकड़ा कर दिया एकदम। इतना क्रोध होते हुए भी, इतना द्वेष होते हुए भी निर्लज्ज होकर, क्यों, क्योंकि यहां मुझे रहने को स्थान मिल रहा है। अहो मही असाम जंतुर जीवित आशा, क्या इच्छा है व्यक्ति को जीने की। शिला भक्ति विनोद ठाकुर उपदेशामृत का एक श्लोक को वर्णन करते हैं, दो श्लोक आता है, छह अनुकूल और छह प्रतिकूल, दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है संग। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल पूर्णिमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षड्भिर् भक्तिर् विनश्यति। भक्ति की विनश विनाश करने के लिए छह कारण, उसमें से एक है जन संग, संग करना, और उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति विनश्यति प्रसिद्ध्यति। संग त्यागात जनसंगश्च संग त्यागात। अगर रूप गोस्वामी कम से कम शब्दों में उपदेश अमृत उसका सार निकाल कर दे रहे हैं, एक बार कह चुके हैं तो दूसरी बार क्यों कह रहे हैं, यानी इतना महत्वपूर्ण है ये बात। खास करके जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिकता से प्रगति करना चाहता है, प्रतिकूल चीजों में ये चीजें प्रतिकूल है, उसमें संग जनसंगश्च, और इसमें अनुकूल चीजों में संग त्यागात। तो वहां लिखते हैं जनसंग मतलब क्या, जो प्रतिकूल है, लिखते हैं वो संग जो हमें अपनी लक्ष्य जो है व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदना, उस लक्ष्य से दूर ले जाए, वो जनसंग है। चाहे कोई भी वो जन क्यों ना हो, चाहे वो मायावादी क्यों ना हो, चाहे वो स्त्री संगी क्यों ना हो, चाहे वो भौतिकवादी क्यों ना हो, कोई भी दूसरा चीज, तो जनसंघ, वो जनसंघ बन जाता है। और संग त्यागात, फिर वही संग है, फिर तो वही दोहरा रहे। अगर कम शब्दों में कुछ कहना चाहते हो तो दोहराना नहीं चाहिए। दोहराना मतलब आप बोलने में कुछ कमी कर रहे हो, आप में कला कम है। नहीं, खास करके उपदेश अमृत एकदम 11 श्लोक में पूरा निचोड़ दे रहे हो, उसमें डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। फिर से नो रिपीटेशन, अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं, तो एक नेसेसरी है। तो क्या है ये? जरूर इसका दूसरा मतलब है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भक्तियालोक नाम के ग्रंथ में बहुत सुंदर से वर्णन करते हैं कि संग के दो मतलब होते हैं, एक एसोसिएशन, दूसरा अटैचमेंट। एक एसोसिएशन और दूसरा अटैचमेंट। और वहां वो लिखते हैं, कहते हैं वो कि एसोसिएशन इज ऑफ, वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। दो प्रकार के संग, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। तो स्त्री संगी एक असाधु, भोग करने की प्रवृत्ति से जो संग करता है वो अनुकूल नहीं है, और कृष्ण अभक्त आर, भक्ति नहीं है तो भी समस्या है। तो महाराज आधे के ज्यादा संसार, पूरे के पूरे संसार 99.9% अभक्त है, तो क्या हिमालय में जाके बैठे? भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं ये संघ का मतलब क्या है। ये दो श्लोकों के तुरंत बाद कहते हैं कैसा संघ करना, संघ का मतलब क्या। ये छह प्रकार के जो प्रेममय आदान प्रदान है, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। गुह्यमाख्याति, भुंगते भोजयते, भिखारी को हम खाना देते, घर के आंगन में बैठा के शायद खिलाएंगे उसको, या कोई बड़ा पोजीशन में है और उसका ऑफिस के कंपनी वालों उसको पार्टी के लिए बुलाते हैं और कुछ खाना देते हैं, जाके खाए। एक कुछ चीजें कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं वो संग नहीं है, करना पड़ता है। अभी बस में या ट्रेन में बैठे कोई बगल में आके बैठ गया हो और नास्तिक एक नंबर का, तो अब क्या करेंगे? उठ के चले जाएंगे, कैंसिल करेंगे अपना टिकट, या उसको उठा के फेंक देंगे खिड़की से? संग त्यागात नहीं, वो संग नहीं है। हृदय से, हृदय खोल के जब ये छह प्रकार के आदान प्रदान होते हैं तब समझना चाहिए आप संग कर रहे हो। ये मंदिरों में वो एंट्रेंस में ऐसा कछुआ दिखाते, उसके ऊपर ही खड़े होते कभी दर्शन करने, कछुआ का सर बड़ा सब आकर बाहर, बोले ये सही जगह है, अपने आंखों को कानों को हृदय को खोलो, पूरा दरवाजा खोलो ताकि अच्छा हवा आने दो, कान खोलो, आंख खोलो, नाक खोलो, हृदय को खोलो और भरो। पर हम जब बाहर जाते हैं, कुर्मोंगानी व सर्वश, बंद करके रखो, हेलो हेलो, बातचीत कर रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, शायद खाना भी खा रहे हैं, उपहार भी दे रहे हैं, किसी को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, हृदय से नहीं हो रहा है, करना है कर्तव्य के रूप में, प्रेम से कर रहे हैं पर हृदय नहीं दे रहे। जिसे प्रभुपा जी ने कहा, वो बंदर और जामुन के पेड़ में रहता था, बंदर और वो कच क्या बोलते हैं मगरमच्छ, तो बंदर गया मगरमच्छ ने वो बंदर को लेके गया और बोला, क्योंकि मगरमच्छ की पत्नी ने बोला था, बंदर के साथ दोस्ती थी मगरमच्छ की, तो जामुन दिया उसने बंदर ने दोस्ती में, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति भुंगते भोजयते, अरे यार तू इतना अच्छा दोस्त है ये ले जामुन खा दो। तो वो बोला मेरी पत्नी के साथ मेरी प्रेम है, तो वो ले गया, प्रेम से खिलाया उसको जामुन। बोली जामुन इतना अच्छा है, कौन दिया तेरे को? बंदर, बंदर हर रोज खाता है, हर रोज ये बंदर इतना अच्छा जामुन खाता है तो उसका हृदय कितना मीठा होगा। वो बोला बहुत मीठा है, मेरा दोस्त है। बोले वो हृदय मेरे को चाहिए। बोले यार धर्म संकट, क्या करूं मैं। और अगले दिन जाके बंदर को बोला तू आ जा, मेरी पत्नी तुझे भूंगते भोजते आदान प्रदान के लिए बुलाई है, लंच के लिए बुलाई है तुझे 2 बजे। बंदर बोला ठीक है जरूर, पर बोले मैं नहीं आ सकता। बोले मैं, तू छलांग मार दे मेरे ऊपर, मैं ले जाऊंगा तुझे। बोले छलांग मार दिया और एकदम तालाब के अंदर बीच में जाने के बाद मगरमच्छ ने कहा दोस्त सिर्फ एक छोटी सी बात, मतलब डिटेल में, मतलब एस्ट्रिक मार्क डाला था कि मेरी पत्नी ने तुझे लंच के लिए बुलाया, पर तुझे बता दूं तू लंच बॉक्स है, तुझे खाने के लिए बुलाई। बंदर थोड़ा जामुन खा खा के थोड़ा होशियार हो गया। तो उसने कहा अरे यार पहले ही क्यों नहीं बोला, भाभी जी चाहती है मेरे हृदय को, तो बोलना था ना मुझे, मैं आजकल आउटसोर्स कर देता हूं उसे, मैं टांगा के आता हूं, मेरे पेड़ के ऊपर टांग के आता हूं, चल ले चल जल्दी मुझे वहां ले आना है, भाभी जी प्रेम से मांग रही है तू। और ये बोला शायद उतना जामुन नहीं खाता था, बोला अच्छा ले गया, जैसे ही छलांग मारा ऊपर जाके बोला गधा कहीं का, समझता है हृदय कोई निकाल सकता है, बहुत हो गई तेरी दोस्ती। प्रभुपाद जी ने ये कहानी, मैं तात्पर्य थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रहा हूं, पर प्रभुपाद जी ने ये कहानी कह के कहा कि जब हम इस संसार में लोगों के साथ संग करते हैं हृदय को अपने घर में टांग के आ जाओ, मतलब संग करो हृदय देना नहीं, डोंट जस्ट ओपन योर हार्ट, ओपन योर माइंड एंड बी जेंटलमैन, वेरी नाइस पर्सन। तो ये प्रकार का संग। और फिर जब संग त्यागात, संग त्यागात, वहां कहते हैं दो प्रकार के, जब संग का मतलब है संग एसोसिएशन, एसोसिएशन में ये दो प्रकार के लोग, स्त्री संगी और कृष्ण भक्त। और जहां तक आसक्ति है, संगात संजायते काम, तो अटैचमेंट टू एसेट्स एंड अटैचमेंट टू प्रिजुडिसेस, एक विचार, एक प्रकार का विचार, उससे हम आसक्त हैं। वी आर समटाइम्स अटैच्ड टू आवर ओपिनियन ऑफ व्हाट इज राइट और रॉन्ग। जो कर्मकांड विचार हो सकता है, ज्ञान कांड हो सकता है, योग सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होता है ये। तो ये विचार जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं। आसक्ति दो प्रकार की होती है, चीजों के प्रति और विचारों के प्रति। और विचार में भी करंट एंड एंशिएंट, इस जन्म में इस शरीर को प्राप्त करने के बाद स्कूल में जाके डार्विन फिलॉसफी सुनने के बाद जो हमारा विचार आ गया, ये एक विचार। और दूसरा करोड़ों जन्मों से हमने जो किया है उसको कहते हैं स्वभाव। वो स्वभाव कर्म मिश्र हो सकता है, वो स्वभाव ज्ञान मिश्र हो सकता है, वो भी हम लोग लाते हैं पुराने जन्म। इसीलिए आप देखते हैं हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, ये बड़ा सूक्ष्म है ये। और ये जाता नहीं है, हिंग को फेंक दो डब्बे में फिर भी वो हिंग था इसमें मालूम आती है, वो गंध इतना जल्दी नहीं जाता हो। तो ये विचार को दूर कैसे किया जाए, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं आत्महत्या कर ले पर वो विचार नहीं जाता हो, शरीर को खत्म कर दो फिर भी वो पुराने विचार जो हैं पिछले जन्मों के वो नहीं जाते, इतने प्रभावशाली और इतने प्रबल हैं। अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदुः। तो मेरे भाई सॉल्यूशन क्या है फिर, स एव साधुषु कृतो मोक्ष धर्म मोक्ष मार्गम अपावरणम। स एव साधुषु कृतो। जब एक महान और शुद्ध भक्त के संग में हम आते हैं, उनकी वाणी जो है उसको प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया सुनते हैं, तब वो शब्द वो वाक्य एक ऐसे साधु, साधु मीन्स जो काटता है, वो काट देता है, वो जो संघ है जो करोड़ों जन्मों से गांठ बंधा हुआ है। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्ति की परिभाषा देते हुए, अन्याभिलाषिता ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो ये इतने आसानी से नहीं जाते। भक्ति विनोद ठाकुर दो उदाहरण देते हैं, एक तो मृगारी का, दूसरा रत्नाकर वाल्मीकि। क्या थे, एक क्षण के अंदर कहां आ गए वो लोग, एक क्षण के अंदर इंस्टेंट। दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक इंस्टेंट और दूसरा नेचुरल एंड ग्रेजुअल। साधारणतः दो प्रकार की पीएचडी होता है, एक है पहले बीएससी करो फिर एमएससी करो फिर पीएचडी करो। साधारणतः सब लोग वही मार्ग से जाते हैं। बिरला कोई एक दो ऐसे होते हैं जिनको घर पे आके यूनिवर्सिटी कहते हैं भाई हम लोग डॉक्टरी देख तेरे को बना देना, नहीं 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 चाहिए, लेना ही चाहिए। वो कृपा सिद्ध है, पर नहीं तो साधारणतः साधना सिद्ध। एकाएक नहीं होता हमारे जीवन में, सूक्ष्म रूप से वो लगा रहता है वो, और उसे निकालने के लिए शुद्ध भक्तों के शब्दों को श्रवण करते रहने से, वो एक ऐसी दवाई है, वो एक ऐसा छुरी है जो धीरे 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 काटता है। नित्यम भागवत सेवया। तो ये एक तरीका है, पर कभी कभी हम देखते हैं कि शास्त्र में भक्ति में आने के बाद भी ये धर्म संकट आ सकते हैं। देखो अगर ये बुरा है और ये भला है, ये निर्णय लेना बड़ा आसान है, प्रभु जी बुरा नहीं चाहिए हमको तो भला ही करना है। पर जब भला में दो चॉइस आता है, ये भी भला, तो कौन सा ज्यादा भला, तो हो भला, कर भला, तो कौन सा करूं। जब दो, उसको कहते हैं धर्म संकट, ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, भक्ति तो करना ही है, ब्रह्मचारी बन के करूं गृहस्थ बन के करूं, दीर्घ काल तक अंतिम सांस तक मुझे करना है, क्या अनुकूल है, इसमें कोई बुरा नहीं है इसमें कोई भला नहीं है, चॉइस। ये ऐसे जो परिस्थितियां आती हैं जहां कुछ निर्णय लेना पड़ता है, कौन सा ज्यादा अच्छा है कौन सा कम अच्छा है, ये निर्णय लेने में समस्या आती है। धर्म सतत्वम निहितम गुहायाम तर्को अप्रतिष्ठो शतयो विभिन्न नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। हर एक व्यक्ति अपना अपना मत देता है, तो कौन सा स्वीकार करे। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः, महाजनो येन वचः, नहीं वचः तो सभी एक ही शास्त्र से ही बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद सेड, तो सेड है। महाजनो येन गतः, उन्होंने उस परिस्थिति में कैसा निर्णय लिया, इस तत्व के सार को कैसा समझा और उसको उतारा, सपंथा सपंथा। इसीलिए रूप गोस्वामी उसी उपदेशामृत में कहते हैं नियमाग्रह, नियम को पालन करने के चक्कर में नियम को पकड़ के मत बैठ जाओ, नियम के सार को समझो और नियम को, अरे चलता है मैं नियम से परे हूं। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदास्थास्यसि निश्चला। भगवान ने कहा है गीता में, शास्त्र से परे चले गए जिस दिन तुमने भक्ति की, तो शास्त्र को ही छोड़ दिया। नियमाग्रह और नियम अग्रह, उसे अवहेलना करना सोच, ये सोचते हुए कि मैं इनसे परे हूं, और या उस नियमों को पकड़ के रखना और नियमों के सार को भूल जाना, ये दोनों अतिवाद हो सकता है। नियम कैसे हैं? एक स्टेयरकेस, सीढ़ी चढ़ते वक्त एक सीढ़ी पर पैर रखो, ठीक से रखो, हाँ जाना तुमको सबसे ऊपर सीढ़ी पे, सब एक पहले एक पैर रखो, पैर रख दिया ठीक है, अभी पिछले वाला पैर उठाओ, नहीं कैसे उठाऊं, वो सीढ़ी मुझे समय एक समय में मदद किया था, तो अच्छा है धन्यवाद दो सीढ़ी को, आगे बढ़ो, नहीं नहीं मैं उठाना नहीं चाहता, ठीक है वहीं टिके रहो, उठाना पड़ता है, फिर ऊपर रखो, फिर इसको निकालो उसको रखो। और इसीलिए शास्त्रों में कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासनाकांड, अलग 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 अलग, जाना वही है पर अलग अलग सीढ़ी बताई गई है, पर उन सीढ़ियों पे, सीढ़ियों से आसक्त मत हो जाओ और सीढ़ियों की अवहेलना मत करो। हाँ अगर लिफ्ट मिल जाए तो दूसरी बात, एलिवेटर मिल जाए, और एलिवेटर का मतलब क्या, जगह मदय के जैसे महाप्रभु ने उद्धार किया, प्रभुपाद ने जैसे उन हिप्पियों का उद्धार किया, उन्होंने प्रामाणिकता दिखाई, पर वो इंट्रावीनस इंजेक्शन दे रहे थे प्रभुपाद आचार्य, पर नहीं तो स्वाभाविक रूप से हमें वो प्रयास करना पड़ता है के उन तत्वों को समझ के। और इसीलिए शास्त्र को समझने के लिए भी साधु परंपरा में महान आचार्य एक परिस्थिति में किस तरह से उस तत्व को लागू किए, हाउ डिड दे अप्लाई द स्पिरिट ऑफ द वर्स, एक श्लोक का सार को कैसे मालूम उनको, महाजनों को कैसे मालूम, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते न जानंती नाहम तेभ्यो मनागपी। महान योगी दुर्वास मुनि समझ नहीं पाए, अम्बरीश महाराज नियमों के तत्व को जानते थे, एकादशी तोड़ना भी है और अतिथि को सत्कार भी करना है, धर्म संकट अगर नहीं तोड़े तो जिस उद्देश्य से पूरे राज्य का सौभाग्य बढ़े, इसलिए मैं एक प्रतिनिधि के रूप में मैं कर रहा हूं, अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो संपूर्ण जो मैंने व्रत निकालू व्यर्थ हो जाएगा, तोड़ नहीं सकता मैं, मेरे लिए मैं नहीं कर रहा हूं, पूरे राज्य का सौभाग्य के लिए कर रहा हूं, कल्याण के लिए कर रहा हूं, और अतिथि इतने महान अतिथि इतने वैरागी हैं, और मैं गृहस्थ हूं, मैं एक राजा हूं, जैसे महाप्रभु ने महाराज प्रताप रुद्र को कहा, उसी भावना में महाराज अम्बरीश कहते हैं मैं तो एक गृहस्थ हूं, मैं एक राजा हूं, पाउंड शिलिंग्स एंड पेंस उसमें आसक्त रहता हूं, और इतने महान ऋषि आए हैं, वो गए हुए हैं स्नान के लिए, आ नहीं रहे हैं अभी तक, तो खाया तो तकलीफ, नहीं खाया तो तकलीफ, पर वो जानते थे वो सार, साधवो हृदयम मह्यम, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के हृदय में निवास करते हैं, उनके सारे वाक्यों के हृदय को सार को जानते हैं, दे नो द हार्ट ऑफ द मैटर, और साधु नाम हृदयम तो बिकॉज द लॉर्ड इज सिचुएटेड इन देयर हार्ट ही डिक्टेट्स ददामि बुद्धि योगम तम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मैं वो बुद्धि दूंगा जिससे वो अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन, धर्म संकट में भी क्या निर्णय लेना है वो समझ पाएंगे।
और ये कह रहे थे तूने नियम तोड़ दिया, पीछे पड़ गए। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, समझने वाली बात। भगवान अल्टीमेटली डिसीजन दिए, ए ये सही है तू गलत है। तो ये जो सूक्ष्म प्रकार की आसक्तियां हैं, ये इतनी आसानी से नहीं जाएगी हमारे जीवन में। और जैसे 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 हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते जाएंगे, एक स्तर से स्थूल चीजों को छोड़ना थोड़ा आसान है। क्यों? मांसाहार नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, जो छोड़ दिया महाराज, वो तो मैं जन्म से ही नहीं, बचपन से ही नहीं कर रहे हम लोग। एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार। पर इसका जो सूक्ष्म हरेक नियम का एक स्थूल क्या बोलते हैं भाव प्रकट होता है, और एक सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है कि पहचाना भी नहीं जा सकता उसे। ऐसा हो सकता है उस सूक्ष्म अनर्थ को ही हम पोषण करते रहे सही समझकर। इसीलिए एक साधु का वाक्य चाहिए, सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावतम। साधुषु कृतो, अच्छा साधु कौन है? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रुव शांता साधव साधुभूषण। बहुत सुंदर तरीके से कपिल मुनि माता देवहूति को इसी श्लोक के तुरंत बाद समझाते हैं। तुम्हें साधु है कौन? तितिक्षव, सहनशील। क्यों क्यों सहनशील होता है साधु? क्योंकि कारुणिका, बहुत करुणा में। जैसे कभी कभी एक छोटा नवजात शिशु मां के गोद में पेशाब कर देता है, मल विसर्जन कर देता है, कभी कभी लात मारता है माता को, मां बोले रास्कल 9 महीना तुझे मैं गर्भ में रखी, अभी जन्म दी, अभी तो लात मारता है, अभी तुझे मैं लात मारती हूं, चल नीचे रख के दिखाती हूं। तो क्या, व्हाट इज द होप, क्या आशा है उस बच्चे को? तो इसी तरह से बद्ध जीव जब महान प्रतिनिधि भगवान के प्रतिनिधियों को जब पोसते हैं, तो तितिक्षव सहनशील होना चाहिए। पहला लक्षण है साधु का, तितिक्षव। क्यों तितिक्षव? कारुणिका, करुणा है। वो अज्ञानी है, वो कुछ कहता है, तू उस स्तर पर क्यों जा रहा है, तू उस स्तर पर क्यों जा रहा है? कारुणिका। अच्छा क्यों इतना करुणा करते हैं वो? सुहृद सर्वदेही नाम, सब जीव के वो सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, क्योंकि भगवान सुहृद हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो भी भगवान के ही साथ में जोड़ने के लिए, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो अच्छा क्यों सुहृद हैं? अब उसको सुहृद है तो कैसे पता लगे? अजात शत्रुवः, उनके कोई शत्रु नहीं है, शत्रु एक ही है, अज्ञान शत्रु है। कोई भी चीज नॉन कृष्णा इज एनिमी, दैट्स ऑल, नहीं तो कोई शत्रु नहीं होंगे। अजात, और इसीलिए शांत, प्रशांत आत्मा। क्यों शांत है? क्योंकि उनके हृदय में वो द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है। है तो सिर्फ भगवान के संबंध में, भक्ति के संबंध में ठीक है, पर दूसरी चीजों से उनको कुछ लेना देना नहीं। शांताः साधवः, दे आर डेकोरेटेड विद द बेस्ट ऑफ क्वालिटीज। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। उनके अंदर जो गुण है, वो गुण में तथा कथित जो दुर्गुण भी दिखे, वो गुण की परिपूर्णता है। वो अगर क्रोधित होते हैं तो इट इज द परफेक्शन ऑफ द एंगर। प्रभुपाद कभी कभी क्रोधित होते थे, दैट इज द परफेक्शन ऑफ एंगर। एंगर, ये सारे जो तीन गुण है ना, एक शुद्ध भक्त के हाथ में टूल बॉक्स है। जैसा एक कारपेंटर होता है, टूल बॉक्स लेता है स्क्रू घुमा के फिर वापस रख देता है, वापस रख देता है काम के बाद। अच्छा काम किया बोल के उसको स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं घूमता, अभी जो आएगा सामने उसके नाक में घुसाऊं, नहीं, वो काम के लिए, क्रोध के काम है, वो इसको समझेगा नहीं तो समझता गधे, समझ गया ना, ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट को खत्म करना है तो पैशनेट लिया, टक 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 हो गया, हरी बोल फिर से, हरे कृष्णा अव्यभिचारिणी भक्ति, तब तीन गुणों से परे है, यानी इन गुणों में है पर इन गुणों को एक टूल बॉक्स जैसे उपयोग करता है, उपयोग करने के बाद हरी बोल वापस। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने साधु संग हरिकथा मोह इष्ट लाभ विने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करिवे यथा यथा और वापस डालिवे तथा तथा, पकड़ के नहीं रखिवे हमेशा। जितना उपयोग किया हो गया रख दो वापस, एक बार काम किया बोल के उसको घुमा दे मत, घुमा तलवार जैसे। तो इस तरह से महाजनों ये नगत सपंथा, उनके अगर चरण चिन्हों में हम चलेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रोसेस, भक्ति का जो प्रोसेस है वो इतना शक्तिशाली है कि बस अपने आप, इसीलिए रूप गोस्वामी कहते उत्साहात निश्चयात धैर्यात, आप धीरज रखो। कभी कभी हमारे चारों ओर हम देखते हैं कुछ हिल जाता है आदमी, ऐसे कैसे, सही में ये पुस्तक काम कर रहे हैं क्या भागवतम, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध कुछ चीजें देख रहा हूं, कभी कभी हमें समझता नहीं है। पर धैर्य निश्चय आप इतना विश्वास रखो, द लॉर्ड इज परफेक्ट एंड हिज वर्ड्स आर परफेक्ट, द प्रोसेस दैट ही हैज रिकमेंडेड इज परफेक्ट एंड दोज हु आर परफेक्टली रिप्रेजेंटिंग इट दे आर परफेक्ट एंड देयरफॉर वी जस्ट फॉलो इन देयर फुटस्टेप्स। अनुकरण नहीं, अनुसरण, महाजनो ये नगत सबंधा। और यहां हम देखते हैं जब विदुर जी का श्रवण किए धृतराष्ट्र जी और उनके कहे हुए मार्गदर्शन पे चले, वो भले नरोत्तम नहीं बन पाए क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किए थे, द्वेष किया था पांडवों के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति, विदुर के प्रति भी अपराध किया था उन्होंने कई बार, पर कम से कम धीर पुरुष बने और वहां से अगले सीढ़ी पे चढ़ेंगे। तो इस तरह से सरल तरीका है, सरल तरीका है। और फिर अगर ऐसा जिएंगे तो जीवित आशा बुरा नहीं है, कुर्वन नेवेह कर्माणि जिजि विशेष शतम समा, हृदय से हम इच्छा करेंगे कि 100 साल जीना है हमको अगर भगवान चाहे तो। हाँ, नामानि अनंतस्य हतत्रप पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस्पृह कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सर, कालम प्रतीक्षण, काल के पहले नहीं काल के बाद नहीं, प्रभु एज यू विश, उससे पहले जाने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। और अगर भगवान बोलते निकल, बोले और थोड़ा दिन रहना है, भुक्ति की इच्छा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम, उनकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा मेरी इच्छा, मैं बड़ा यशस्वी हूं, मैं इन द पीक ऑफ माय सीजन वर्ल्ड कप खेल रहा हूं, और एक सूचना मिली रिटायर, अभी सिक्सर मारा दूसरे बॉल के अंदर, नहीं अभी रिटायर हो गया क्योंकि बोला गया उधर, समझ लीजिए अंदर से आवाज आया, द पीक ऑफ योर परफॉर्मेंस रिटायर, और बुरी तरह से मार खा रहा है उस समय रिटायर, वहां रिटायर होना अच्छा है, थोड़ा इजी है, पर कभी कभी ऐसा अनुकूल प्रतिकूल होता है परिस्थिति पर, जब जैसे चाहे उनकी इच्छा, पर मैं अपना सीताराम 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 कहिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम रस पीजिए, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए। धन्यवाद, थैंक यू माय लॉर्ड। और निर्विवाद ततेन गंपम सुषमीक्षमाणु भुंजाने वात्मकृतम हृद्वाग वपुर्भिर् विदधा नमस्ते। जीवे तयो मुक्ति पदे, जीवन मुक्त है वो, अभी भी मुक्त है और वहां भी मुक्त है। की फर्क पैंदा है, इधर रहो या उधर रहो, हरि बोल बोलते रहो बस। फिर हे ठाको बने ठाको, सदा हरि बोले ठाको। जन्माओ भी मोर इच्छा यदि तर, मेरी जो भी इच्छा हो, मरना हो जीना हो, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कौन सा भजन है वो, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। मैं आपका दास हूं, मैं बॉस नहीं हूं, आपको मैं नहीं बोलना चाहता। और थोड़ा दिन रखो ना, अच्छे दिन है मेरे, पहली बार आए हैं इतने साल के बाद। अरे बुरे दिन है, ऐसा क्यों दिखा रहा है प्रभु? नहीं, धन्यवाद निर्विवाद। बोलना बड़ा आसान है व्यासासन पे बैठ के, पर उतर के जाने के बाद प्रसाद नहीं मिला, प्रवचन चा वांगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निथाय गौर प्रेमानंदी।